वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 4 अध्याय का नाम है राजा कंस के अत्याचार। श्लोक संख्या 14 मेरे पीछे बोलिए। तया विहितम आकर्ण कंसा परम विस्मिता देवकी वसुदेवम च विमुच्य प्रस्थितो ब्रवीत। तया विहितम आकर्ण कंसा परम विस्मिता देवकी वसुदेवम च विमुच्य प्रस्थितो ब्रवीत। तया विहितम आकर्ण कंसा परम विस्मिता देवकी वसुदेवम च विमुच्य प्रस्थितो ब्रवी। बोलिए शब्दार्थ बोलिए। तया दुर्गा देवी द्वारा अभिहितम कहे गए शब्दों को आकर्ण्य सुनकर कंसः कंस परम विस्मितः अत्यधिक आश्चर्यचकित था। देवकी देवकी को वसुदेवम च तथा वसुदेव को विमोच्य तुरंत विमुक्त करके प्रस्थितः अत्यंत दीनता पूर्वक।
हरि बोल। अब ब्रवीत इस प्रकार बोला। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। दुर्गा देवी के शब्दों को सुनकर कंस अत्यंत विस्मित हुआ। तब वह अपनी बहन देवकी तथा बहनोई वसुदेव के निकट गया, उन्हें बेड़ियों से विमुक्त कर दिया तथा अति विनीत भाव में इस प्रकार बोला। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले समझेंगे कथा वस्तु क्या है। भगवान कृष्ण ने जब कारागार में जन्म लिया तो अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। वो चतुर्भुज बालक रूप में, बड़े रूप में नहीं है, जैसा यहाँ चित्र बना हुआ है ऐसा नहीं है। जो चतुर्भुज रूप भगवान ने जो दिखाया था वो नवजात बालक का था, जो गोद में लेटा हुआ था और गर्भ से उत्पन्न हुआ था। तो इतनी छोटा बालक, इन चार भुजाएं, सब वस्त्र भी धारण किए, आभूषण धारण किए, है ना, और प्रसन्न मुख, रो नहीं रहा है ना। तो ये जो है अद्भुत बालक, और उस अद्भुत बालक ने बातचीत भी की अपने माता पिता से, और फिर जो है बातचीत करने के बाद और आदेश भी दे दिया कि मुझे वहाँ छोड़ के आओ नंद महाराज के घर में, और फिर वो बालक दो भुजाओं वाला शिशु बन गया। तो बालक उतना ही बड़ा था जितना चार भुजाओं का था, उतना ही दो भुजाओं का बालक था। दो भुजाओं का बालक हो गया और अब नग्न हो गया। अब नग्न है और दो भुजाओं का है, जबकि पहले चार भुजाओं का बालक था और क्या था, वस्त्र आभूषण सब धारण किए था और बोल रहा था, और अब जो है नग्न बालक है और अब नहीं बोलता है। छोटा सा बच्चा कैसे बोलेगा। तो अब जो है, और वसुदेव जी ने जैसे चाहा कि बालक को उठाऊं मैं, तो तुरंत हथकड़ी बेड़ियां अपने आप खुल गई, है ना। और बालक को लेके जैसे गए तो वो जो है जो दरवाजे हैं वो खुल गए, अपने आप खुल गए, ताले खुल गए, और जो पहरेदार हैं वो सब सो गए, और जब आगे बढ़े तो सब कठिनाइयां अपने आप उसी समय दूर होते हैं जिस समय वसुदेव जी अपना पैर आगे बढ़ाते हैं। जैसे पैर आगे बढ़ाते हैं उसी समय सब बाधाएं दूर होती जाती हैं और बालक को छोड़ के आए और बालिका को लेकर के आए और यहां पर जब आ गए तो फिर उनकी जो है बेड़ियां फिर से वैसे ज्यों की त्यों बंध गई, वो बंध गए बेड़ियों में, है ना। तो वसुदेव जी खुद अपने को बांध भी नहीं सकते बेड़ियों से और ना अपने को खोल सकते हैं, लेकिन वो सब हथखड़ी बेड़ियां जो है खुल गई थी अपने आप और अपने आप बंद हो गई। और अब बालिका जो है रोई और तब कंस जो है दौड़ा दौड़ा आया, उसको समाचार मिला कि मेरा शत्रु पैदा हो गया, मेरा शत्रु पैदा हो गया, मेरा शत्रु पैदा हो गया। तो कंस जो है चिंतन कर रहा था शत्रु का विष्णु के रूप में, हाँ, और उसको पिछले जन्म की भी याद थी, काल नेमी असुर था और भगवान विष्णु ने उसका वध किया था, तो उस रूप में ही जो है पिछले जन्म का शत्रु है मेरा, है, और मुझे अब जो है फिर से है, मारने के लिए पैदा हुआ है। तो ये सोच करके आया, लेकिन जब देखा तो क्या थी, बालिका थी। अरे ये तो बालिका है, फिर भी जो भी हो है, आठवां गर्भ जो है मेरी हत्या करेगा, आकाशवाणी ने कहा है, तो जो भी हो उससे जो भी पैदा हुआ है बालक हो या बालिका हो मुझे इसको मारना है। तो पैर पकड़ करके पत्थर में पछाड़ता था, वो जो है बच्चे का जो है पैर पकड़ के और पत्थर में पछाड़ता था। तो जैसे उसने ऐसे किया तो बालिका छूट गई और फिर पूर्ण जो है देवी, हाँ, सिंह पर आसीन देवी, आठ भुजाओं वाली देवी, और जो है उसके सिद्ध चारण देवता सब स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं और उसके आठ आयुध उसके हाथों में है ना। और कंस वो जो है वो डांट करके बोली कि मूर्ख, हाँ, तो जो है अब निर्दोष बालकों की हत्या, हाँ, क्यों करता है, हाँ, नहीं क्या कहा था इसमें आया है, इसमें है कि मुझे मरने से तुझे क्या मिलेगा, तेरा जन्मजात शत्रु तथा वध करने वाला, हाँ, पूर्व शत्रु जो है अन्यत्र कहीं जन्म ले चुका है, अन्यत्र जन्म ले चुका है, हाँ? अब तू जो है व्यर्थ बालकों का वध मत कर, हाँ ये भी कहा तू व्यर्थ बालकों का वध मत कर। तो ये जो है उसने कहा देवी ने, और फिर जो है अनेक स्थानों में वो विराजमान हो गई अलग अलग नामों से, वो देवी अन्नपूर्णा दुर्गा काली भद्रा इन नामों से विराजमान हो गई, है ना। और अब आज के श्लोक में बताया गया है तया है अभिहितम आकर्ण, उस देवी के द्वारा जो कहे हुए वचन को सुनकर के कंसा परम विस्मिता, कंस परम विस्मित हो गया, परम विस्मित हो गया, हाँ, देव की वसुदेवम च विमुच्य, तो देव की वसुदेव को उसने बंधन से छोड़ दिया, हाँ, और प्रसृतो अब्रवीत, प्रसृत होकर के यानी बिल्कुल आश्रित प्रकृष्ट रूपेण स्थित, स्थित माने पूरी तरह से आश्रित होकर के अब वो बोलने लगा। तो वसुदेव देवी की को तो अब बिल्कुल उसने निर्दोष समझ लिया कि वसुदेव देवी की तो बिल्कुल निर्दोष है, है ना, और अब ये बोल रहा है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। कंस को आश्चर्य हुआ क्योंकि देवी दुर्गा तो देवकी की कन्या निकली, देवकी तो मानव जाति की थी, भला देवी दुर्गा उसकी पुत्री किस तरह हो सकती है। तो कंस को इस बात का विस्मय हुआ, प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि कंस को इस बात का विस्मय हुआ कि देवी दुर्गा देवकी की पुत्री कैसे हो सकती हैं जो देवी हैं, है ना, साक्षात देवी, तो अगर देवकी की पुत्री हैं तो फिर देवकी क्या है, फिर देवकी क्या है, अगर वो देवी जो है इनकी पुत्री है तो फिर देवकी क्या है, क्या हो सकती है। मैं तो इसको एक सामान्य बहन मानता था, है? और ये जो है मेरे आश्रित, और मैं इसके साथ जितना भी अन्याय करता हूँ बेचारी सहन कर रही है, लेकिन ये तो जो है पता नहीं क्या है, देवकी फिर कौन सी देवी हो सकती है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि देवकी तो मानव जाति की थी, भला देवी दुर्गा उसकी पुत्री किस तरह हो सकती है, उसके आश्चर्य का यही कारण था। यही नहीं, देवकी की आठवीं संतान कन्या कैसे हो गई, अब इसमें आकाशवाणी पहले हुई थी जब देवकी के विवाह के अवसर पर कंस वसुदेव देवकी को घर छोड़ने जा रहा था, ससुराल छोड़ने जा रहा था। तो समय क्या था, अस्यास त्वाम अष्टमो गर्भो हंता याम भाष्य बुध, कि इसका जो आठवां गर्भ है ये तेरा जो है हत्यारा होगा, है ना। तो हंता, हंता ये पुरुषवाचक शब्द है, हंता गर्भ तो ठीक है, गर्भ तो कहा कि आठवां गर्भ है, तो गर्भ में तो बालक या बालिका कुछ भी हो सकती है, लेकिन तो अभी जब हंता कहा है तो हंता तो पुरुषवाचक है, स्त्रीवाचक में हंत्री या कुछ ऐसा शब्द होगा, संस्कृत में इस तरह से होता है, हिंदी में भी हत्यारा या हत्यारी ये शब्द होता है, तो संस्कृत में भी होता है। तो आकाशवाणी की जो बात है वो कैसे गलत हो गई, आठवां तो जो है पुत्र होना चाहिए और ये कन्या कैसे हुई, तो इस बात से भी कंस परम विस्मित हुआ। आगे प्रभुपाल लिखते हैं, इससे भी उसे आश्चर्य हुआ, असुरगण सामान्यतया माता दुर्गा अर्थात शक्ति या फिर देवताओं के विशेष रूप से शिव जी के भक्त होते हैं, विष्णु से द्वेष करते हैं, असुर लोग विष्णु से द्वेष करते हैं और देवी का सम्मान करते हैं या शिव जी का सम्मान करते हैं, तो यही जो है उल्टा दिमाग है उल्टा दिमाग है ना। तो जो देवी हैं, दुर्गा देवी है, ये भगवान की शक्ति है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, भगवान की एक जो है शक्ति है, सृष्टि और पालन और संहार करने वाली एक शक्ति है दुर्गा, और वो भगवान के अधीन है, है ना। और जो शिव जी हैं तो भगवान से उसी प्रकार होते हैं जैसे दूध से दही बनता है, है? तो दही है? जो है फिर दूध दोबारा वापस नहीं बन सकता, लेकिन दूध से तो और दही बन जाता है, तो शिव जी में वो गुण नहीं है जो विष्णु में है, तो शिव जी भी स्वतंत्र नहीं है भगवान से, दुर्गा भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, लेकिन असुरों का जो है दिमाग ऐसा उल्टा होता है कि विष्णु से तो द्वेष करते हैं और विष्णु को तो मारना चाहते हैं, और देवी की जो है उपासना करेंगे या सम्मान करेंगे, शिव जी की उपासना करेंगे या सम्मान करेंगे, है ना। तो आगे चल करके ये बात आएगी भी कि जब सवेरे सवेरे जब कंस उठेगा और अपने मंत्रियों को बताएगा तो वो लोग मंत्री लोग क्या बोलेंगे, सब आसुरी स्वभाव के हैं ना, तो वे क्या बोलेंगे, हाँ क्या बोलेंगे कि विष्णु को जो है हम खत्म कर देंगे, क्योंकि विष्णु ही देवताओं के मूल हैं, जड़ हैं, और उसी में ही जो है सनातन धर्म भी है, तो जड़ जो है विष्णु है, सनातन धर्म की भी जड़ विष्णु है, देवताओं की जड़ विष्णु है, और विष्णु का जो स्थान है वो क्या है, वेद हैं, गौ हैं, ब्राह्मण हैं, तपस्या है, यज्ञ है, तो हम इनको नष्ट करें, विष्णु को नष्ट करने का जो है बड़ा अच्छा तरीका है, क्या नष्ट करें, वेद गौ ब्राह्मण तपस्या यज्ञ इनको नष्ट करें, है ना। तो वो जो बता रहे हैं कि ब्राह्मण गौ वैदिक ज्ञान तपस्या सत्य मन इंद्रियों का संयम श्रद्धा दया सहिष्णुता यज्ञ ये विष्णु के शरीर हैं, है ना, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं को नष्ट करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति हृदय में वास करने वाले परमात्मा स्वरूप विष्णु असुरों के परम शत्रु हैं और हमारे शत्रु हैं। अब देखो हमारे हृदय में निवास कर रहे हैं वो, हमारे हृदय में निवास करते हैं, सबके हृदय में निवास करते हैं, हाँ गुहाशया ये बताया गया है कि असुर द्विज गुहाशया हृदय में निवास करते हैं लेकिन हमारे शत्रु भी हैं। अब हृदय में निवास करते हैं तो ज्ञान स्मृति सब कुछ तो वो ही दे रहे हैं, है ना, या असुर उनसे दुश्मनी करते हैं, है? तन्मूला देवता सर्वा और ब्रह्मा सहित जितने भी देवता हैं तो सब जो है उन्हीं से ही पोषित हैं, जड़ जड़ वही हैं, उन्हीं से ही ब्रह्मा और देवता उनको पोषण मिलता है, जड़ विष्णु है, अयम में तद मधो पायो, तो फिर विष्णु के वध का उपाय यही है, यद ऋषि नाम भिंसनम कि वैष्णवों का जो है वध किया जाए, वैष्णवों का वध किया जाए, वैष्णवों पर आश्रित हैं, जड़ जो है सब विष्णु है और वो निवास करते हैं वैष्णव में, तो वैष्णवों का ही वध करो, है ना। तो इस प्रकार के जो है दुर्मंत्रणा ये बात है, दुर्मंत्री हैं, कंस के सब जो है मंत्री कैसे हैं, दुर्मंत्री है, उनकी दुर्मंत्रणा है इस प्रकार से जो है। तो यहां प्रभुपाद लिख रहे हैं कि असुरगण सामान्यतया माता दुर्गा अथवा शक्ति या फिर देवताओं के विशेष रूप से शिव जी के भक्त होते हैं। अपने आदि अष्टभुजी रूप में हथियार धारण किए हुए दुर्गा के प्राकट्य ने तुरंत ही कंस की इस धारणा को बदल दिया कि देव की मानव है। अब उसके दिमाग में विचार बिल्कुल बदल गया कि देव की तो जो है बहुत श्रेष्ठ स्त्री है, अगर विष्णु को जन्म देगी तो देव की मेरी दुश्मन है और विष्णु मेरे दुश्मन है, लेकिन दुर्गा को जन्म दिया है तो जो है बहुत बड़ी देवी है, महादेवी है। अब जो है ऐसा सोच रहा है, धारणा को बदल दिया, अब सोचती देव की मानव नहीं हो सकती। अवश्य इसमें कोई ना कोई देवी गुण होंगे, अन्यथा देवी दुर्गा इसके गर्भ से क्यों जन्म लेती। ऐसी परिस्थिति में आश्चर्य जगत कंस ने अपनी बहन देवकी के प्रति की गई निशंसताओं की प्रतिपूर्ति कर देनी चाहिए कि मैंने जितना अन्याय किया है तो उसकी पूर्ति करूं। कैसे? हाथ जोड़ करके, विनय से प्रसन्न करके, हर प्रकार से इनको जो है प्रसन्न करना है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो अब हमें ये समझना है कि ये जो देवी है ये सुदा के गर्भ से जन्मी है ना, और कृष्ण देव के गर्भ से जन्मे, तो कंस को तो ये पता चला नहीं है ना, और पता चल भी नहीं सकता क्योंकि असंभव कार्य जो है योग माया ने किया था, और इसी भगवान ने इसी देवी को आदेश दिया कि तुम ये काम करो है? तुम ये काम करो और यशोदा के घर से जन्म लो। तो उसी देवी ने कृष्ण की आज्ञा से ये सब कार्य किए थे है ना। तो अब तो ये समझ नहीं सकते, लेकिन हमको समझना है कि जो सुभद्रा जी हैं कृष्ण की बहन वो अलग हैं, ये नहीं है, है ना। क्योंकि इसमें आया है एक श्लोक, मैंने इसलिए पहले से ही निकाल करके रखा है इसको, कि पहले अध्याय का श्लोक संख्या 56, पहले अध्याय का श्लोक संख्या 56 है। इसमें बताया गया है कि अथ काल उपावृत्ते देव की सर्वदेवता पुत्रान प्रसु सुवेचाष्टो कन्याम चैवानुवत्सरम, कि देव की जो है उसने 8 पुत्र और 1 कन्या को एक एक वर्ष के अंतर में जन्म दिया। तो ये तो स्पष्ट है, लेकिन आगे चल करके फिर ये बात नहीं आती तो हम लोग भ्रमित हो जाते हैं और सोचते हैं वो सुभद्रा फिर यशोदा जी से जन्मी है, ये वही देवी है या देवी कैसे जन्मी है, तो काफ़ी इससे जो है विवाद पैदा हो जाता है। लेकिन ये स्पष्ट है कि जो सुभद्रा का भी जन्म नहीं हुआ और कंस ने जो है देव के वसुदेव को छोड़ दिया है, यहाँ पर बताया गया है कि विमुच्य यानी छोड़ दिया हा? तो अब वसुदेव देव की जो है कंस के कारागार से मुक्त हो गए हैं, अपने घर में हैं और बिल्कुल अब कैसे हैं, सामान्य। अब कंस का कोई नियंत्रण नहीं है देव की वसुदेव के ऊपर कि भाई इनके ऊपर कुछ नज़र डालना है और इनकी निगरानी करना है, जासूसी करना है, कुछ नहीं है। देव के वसुदेव बिल्कुल नॉर्मल हो गए, और कब तक नॉर्मल हो गए, जब तक नारद जी ने नहीं बताया कंस को। और नारद जी ने कंस को कब बताया, जब भगवान कृष्ण 11 वर्ष के हो गए और राधा कुंड का प्राकट्य हुआ, केसी का वध हो गया है? तब कंस को नारद जी ने बताया कि वसुदेव ने ही जो है छिप करके कृष्ण को गोकुल में पहुंचा दिया और यशोदा की कन्या ले आए थे, है ना। तब कंस को समझ में आया कि अरे आकाशवाणी ने सही कहा था और मुझको वसुदेव ने धोखा दिया है ना। तो उस समय फिर कंस ने वसुदेव देवकी को फिर से कारागार में डाल दिया, लेकिन अब तो उसको मरना ही है। कारागार में डाल दिया और फिर जो है अक्रूर को कहा कि बुलाओ कृष्ण को, हमें कृष्ण को मार डालना है। और कृष्ण को मार डालने की योजना में वो कृष्ण के हाथों मारा गया कंस। तो देव की वसुदेव जो है शायद 2-3 दिन, ज्यादा ज्यादा 2-3 दिन के लिए कंस ने कैद किया था, है ना। और सुभद्रा का जन्म कब हो चुका है, कृष्ण 11 साल के बाद कंस ने 2-3 दिन के लिए देव की वसुदेव को बंदी बनाया। तो सुभद्रा का जो जन्म हुआ तो बहुत सामान्य स्थिति में 1 साल के बाद, तो उसमें कोई मतलब वसुदेव देव की के साथ सुभद्रा रही दस साल, अभी सुभद्रा 10 साल की हो गई जब कंस मारा गया, है ना, तो 10 साल तक सुभद्रा वसुदेव देवकी के साथ रही और बिल्कुल कोई समस्या नहीं, कोई डर नहीं, किसी प्रकार का कोई शंका नहीं रही, है ना। तो ये बात समझना है ना, ये बात कोई मतलब ऐसी नई नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल स्पष्ट है। जो कथा है दसवें स्कंद की उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि सुभद्रा के साथ जो है किसी प्रकार का भी मतलब खतरा नहीं आया और कोई शिकायत नहीं आई, सुभद्रा के जन्म के विषय में कुछ भी मतलब कोई शंका और संदेह की बात नहीं आई है, सुभद्रा बिल्कुल सुरक्षित है। और जब कंस ने देवकी वसुदेव को कारागार में डाला तो सुभद्रा उस समय भी सुरक्षित थी, घर में थी अपने, है ना, तो कोई मतलब ऐसी। और फिर कंस मारा गया तो फिर कृष्ण बलराम आए तो उन्होंने फिर छोड़ा, है ना। और अभी कंस ने जो है इनको वसुदेव देवकी को मुक्त किया है, तो योग माया ने पहले ही वसुदेव जी को मुक्त कर दिया था और छोड़ के आए, और फिर योग माया ने हथकड़ी बेड़ियां ज्यों की त्यों पहना दी, वसुदेव जी अपने आप सब हो गया, अपने आप हथकड़ी बेड़ियां सब लिपट गई, अपने आप सब ताले लग गए, वो ताले खुल गए थे, पहले हथकड़ी बेड़ियों के ताले खुल गए थे, अब ताले बिल्कुल लग गए, सब अपने आप होता है, जैसे हवा में हो रहा हो सब कुछ ऐसे हो रहा है। और अभी कंस ने फिर से छोड़ा है। तो ये आज के श्लोक की घटना है। अब एक और जो विशेष मुझे चर्चा करनी है वो ये करनी है कि कंस ने जिस समय ये अत्याचार किया तो उग्रसेन जो है वो तो राजा थे, कंस तो युवराज था, तो उग्रसेन अगर राजा हैं तो वो कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले ही ये कंस का उग्रसेन के साथ विरोध हुआ। कब विरोध हुआ? जिस समय कंस ने पहले बालक को मार डालने के लिए वो जो है तैयार हुआ, है ना, तो कंस सभा में था, उग्रसेन की सभा थी, है ना, तो सभा में ही वसुदेव जी लेके आए बच्चे को, तो कंस ने पहले तो कहा कि मुझे कोई इससे बालक से डर नहीं है, आप ले जाइए। और जब नारद जी ने एकांत में समझाया कंस को कि भाई सब देवता हैं, वसुदेव देव की भी जो है देवता हैं, यादव वंश में जितने भी पुरुष हैं सब देवता हैं, स्त्रियां हैं सब देवियां हैं, और जितने भी वसुदेव के पुत्र हो रहे हैं वो सब देवता हैं, ये सब तुम्हारे जो है विपक्षी लोग हैं, शत्रु पक्ष के लोग हैं ये, और विष्णु की जो है सहायता करने के लिए ये सब जो है यदुवंश में पैदा हो रहे हैं। और कंस था भोजवंशी, तो उसको फिर जो है समझ में आया कि वसुदेव के जितने भी पुत्र हो रहे हैं इनको मारना है, तो पहले पुत्र को जब मारने वाला था तो उस समय क्या हुआ, बहुत बड़ा युद्ध हुआ कि उग्रसेन महाराज कैसे देख सकते थे, है? तो क्या हुआ था, तो वो मैं आपको जो है सुनाना चाहता हूं। नारद जी, ये गर्ग संहिता में ये वर्णाता है, नारद जी कहते हैं राजा बहुलाशु से, नारद जी कहते हैं कि हे राजन, उसने उसी क्षण यादवों को मार डालने का विचार किया, उसने वसुदेव देवकी को मजबूत बेड़ियों से बांधकर कैद कर लिया और देवकी के उस प्रथम गर्भजनित शिशु को शिला पृष्ठ पर रखकर पीस डाला। उसी समय देवकी वसुदेव को जो है कैद किया उसने और बच्चे को मार डाला। फिर क्या हुआ, उससे अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का स्मरण था, अतः भगवान विष्णु के भय से तथा अपने दुष्ट स्वभाव के कारण भी उसने इस भूतल पर प्रकट हुए देवकी के प्रत्येक बालक को जन्म लेते ही मार डाला। ऐसा करने में उसे तनिक भी हिचक नहीं हुई। यह सब देखकर यदुकुल नरेश राजा उग्रसेन उसी समय कुपित हो उठे। तो यहां समझना चाहिए कि पहले पुत्र को ही जब मारने लगा तब उग्रसेन कुपित हो गए, है ना, यही समझना पड़ेगा। उग्रसेन के सामने कैसे हो सकता है राजा के सामने एक जो है नवजात बालक को कोई मारे, उग्रसेन कुपित होटे, पिता जो है कुपित होटे। उन्होंने वसुदेव जी की सहायता ली और कंस को अत्याचार करने से रोका। कंस के दुष्ट अभिप्राय को प्रत्यक्ष देखकर महान यादव वीर उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए। जितने यादव लोग उग्रसेन का जो है उनको बल मिला, तो जितने यादव थे सब उठ खड़े हुए। तो वहीं सभा में ही थे, सभा में ही जो है ये सब क्या हो गया, शोर मच गया, हाँ विरोध हुआ, और वे उग्रसेन के पीछे रहकर खड़ग हाथ में लेकर उनकी रक्षा करने लगे। कंसस्य दुरभिप्रायम् दृष्टोत्तस्थुर महाभटं उग्रसेनानुगा रक्षाम चक्रुस्ते खड्गे पाणयः। उग्रसेन के अनुगामियों को युद्ध के लिए उद्यत देख कंस के निजी वीर सैनिक भी उनका सामना करने के लिए खड़े हुए। अब कंस के निजी वीर थे सैनिक, कंस के निजी वीर सैनिक, कंस ने दिग्विजय किया था तो अलग अलग स्थानों में उसने असुरों को हराया था और इस शर्त पर युद्ध किया था कि अगर तुम हार जाओगे तो तुम मेरे सेवक बन जाओ, अगर मैं हार जाऊं तो तुम्हारा सेवक बन जाऊं। तो मित्रता के भाव में ही युद्ध किया था असुरों से, हाँ, और मैं या तो जीवन भर तुम्हारी सेवा करूं या जीवन भर तुम मेरी सेवा करो। तो तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, ये सब असुरों को कंस ने जो है अपना सेवक बना लिया था। तो अब इन असुरों की सेना और कहाँ यादवों की सेना, कहाँ मुकाबला, असुरों की सेना से यादवों की सेना का मुकाबला कैसे हो सकता है? तो कंस के जो है सब अपने वीर सैनिक थे। तो क्या हुआ, राजसभा के मंडप में ही दोनों दलों का परस्पर युद्ध होने लगा। सभा मंडप के अंदर ही हुआ युद्ध, सभा मंडप में ही युद्ध होने लगा। राजद्वार पर भी उन दोनों दलों के वीरों में परस्पर युद्ध छिड़ गया। वे सब लोग खुलकर एक दूसरे पर खड्ग का प्रहार करने लगे। इस संघर्ष में 10,000 मनुष्य मारे गए, 10,000 मनुष्य मारे गए, असुर एक भी नहीं मारा गया। असुर तो बहुत शक्तिशाली होते हैं मनुष्यों की तुलना में, 10,000 मनुष्य मारे गए, है ना। तो कंस ने ऐसे नहीं मारा है देवकी के पहले पुत्र को, देवकी के पहले पुत्र को मारने के पहले 10,000 सैनिक मारे गए उग्रसेन के। इसमें बताया है, द्वार देशे वीराणाम युद्धम जातम परस्परम खड्गे प्रहारे रयुतम जनानाम निधनम गतम। तब कंस ने गदा हाथ में लेकर पिता की सेना को कुचलना आरंभ कर दिया। अब कंस में बहुत शक्ति, कंस में बहुत शक्ति थी, उसकी गदा से छू जाने पर ही कितने लोगों के मस्तक फट गए, इतना शक्तिशाली था कंस, गदा छू जाए तो सिर फट जाए, है ना। कितनों के पांव कट गए, मुख विदीर्ण हो गए, बाहें कट गईं, उनकी आशा पर पानी फिर गया, कोई औंधे मुंह और कोई उतान होकर अस्त्र शस्त्र लिए क्षण भर में धराशायी हो गए। भिन्न पादा भिन्न मुखास छिन्नासा छिन्न बाहवा अधोमुखा ऊर्ध्वमुखा सहस्रा सशस्त्रा पतिता क्षणात्। क्षण एक क्षण होता है 4 मिनट का, तो कंस को 4 मिनट लगे, 4 मिनट में उसने और कर दिया। 10,000 तो पहले मारे गए और कंस के द्वारा और कितने मारे गए, है ना। फिर क्या हुआ, बहुत से वीर खून उगलते हुए मूर्छित हो काल के गाल में चले गए। वह इतना खून प्रवाहित हुआ कि सारा सभा मंडप रंग गया, कहाँ राजा की सभा और कहाँ खून ही खून हो गया पूरा। हे राजन, इस प्रकार दुष्ट कंस ने कुपित हो शत्रुओं को धराशायी करके अपने पिता को कैद कर लिया। उग्रसेन ने आदेश दिया था किसको कैद कर लो, कंस को कैद कर लो, तो कंस को कैद करने के ही लिए असुरों की जो सेना थी और यादवों की सेना में युद्ध हुआ, है ना। और जो है फिर कंस ने जो है उग्रसेन को कैद किया, अब इनको कैद करो, ये मेरा पिता है इसको कैद करो। तो कंस ने कैद कर लिया, उन्हें राज सिंहासन से उतार कर उस दुष्ट ने पासों से बांधा और उनके मित्रों के साथ उन्हें भी कारागार में बंद कर दिया, है ना। और मधु और सूरसेन की सारी संपत्तियों पर अधिकार करे स्वयं कंस स्वयं सिंहासन पर जा बैठा और राज्य शासन करने लगा। समस्त पीड़ित यादव संबंधी के घर जाने के बहाने तुरंत चारों दिशाओं में विभिन्न देशों के भीतर जाकर रहने और उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। अब कंस का यादवों के ऊपर अत्याचार फिर बढ़ गया, हा? और कोई भी यादव मान लो घर से निकलता है, कोई भी असुर उसको मार देगा, वो कोई सुनवाई नहीं होगी, रास्ते में चलते चलते मार दें, जैसे कोबलिया पीठ कंस को तैयार कर दिया था कृष्ण बलराम को मार दें, और कृष्ण बलराम को मार देंगे और कोई सुनवाई नहीं होगी, राजा का हाथी है, कोई सुनवाई नहीं होगी, है ना। चाणूर मुष्टिक को कहा था मार देना, और मार देंगे कृष्ण बलराम को, कोई सुनवाई नहीं होगी, तो राजा के पहलवान है, ऐसा राज था। कंस का राज इस प्रकार का था कि कोई सुनवाई नहीं, राजा की ओर से अगर कुछ होता है, राजा के आदमी कुछ मारते हैं किसी को भी, किसी बिना कारण के मार दें किसी को, कोई सुनवाई नहीं होगी। कंस का ऐसा राजा था, है ना। तो यही मुझे कुछ बताना था, कुछ चर्चा करनी थी। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी, रुक्मिणी कृष्ण, हैंड माइक चालू करो।
धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छे ढंग से आपने समझाया, विशेषकर सुभद्रा महारानी के बारे में। तो सुभद्रा महारानी जी को भी योग माया बताया जाता है?
सुभद्रा जी योग माया नहीं है,
नहीं
है। सुभद्रा जी योग माया नहीं है, सुभद्रा कृष्ण की बहन है। आप जो भी हो, भगवान की कई शक्तियां हैं, कई प्रकार की शक्तियां हैं, योग माया अलग शक्ति है, तो असंख्य शक्तियां हैं भगवान की, सुभद्रा भी एक शक्ति है, जो भी हो, योग माया नहीं। तो इसलिए मैंने मतलब बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि योग माया ने जन्म दिया था यशोदा के गर्भ से, हैं, और कृष्ण ने जन्म लिया था, कृष्णानुजा कही जाती हैं, कृष्ण की छोटी बहन। लेकिन कृष्ण के तो जन्म जब कारागार में हुआ, हैं, और तुरंत ही योग माया ने जन्म लिया यशोदा के गर्भ से, लेकिन एक साल के बाद सुभद्रा का जन्म हुआ। वो बिल्कुल कंस से उसका कोई संबंध हुआ ही नहीं, ना कोई शिकायत आई, ना कोई शंका हुआ, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, पहले हाथ उठाए इनको।
धन्यवाद प्रजी। प्रजी, कंस ने वसुदेव और देवकी को मतलब दो बार बंदी बनाया और दो बार छोड़ा, मतलब जैसे पहली बार
वसुदेव देवकी को दो बार बंदी बनाया। हाँ, दो बार बंदी तो बनाया, लेकिन दूसरी बार तो कृष्ण बलराम ने छोड़ा ना।
हाँ,
मतलब कृष्ण बलराम ने छोड़ा, उसने बंदी बनाया था, और एक दिन दो दिन में जो है उसका फिर उसका वध हो गया, और कृष्ण बलराम आए उनको छोड़ने के लिए।
आकाशवाणी सुनने के बाद वो मतलब बंदी नहीं बनाया था सर?
आकाशवाणी सुनने के बाद कंस ने बंदी नहीं बनाया, एक साल के बाद बंदी बनाया।
पहले
आकाशवाणी सुनने के बाद जो है, जब वसुदेव जी ने उसको वचन दिया कि मैं वचन देता हूं कि देवकी से जितने भी पुत्र उत्पन्न होंगे तुम्हारे हवाले कर दूंगा, तो कंस को इतना विश्वास था, वो खुद तो झूठ बोलता था, लेकिन वसुदेव जी पर इतना विश्वास था कि ये झूठ नहीं बोलेंगे, तो उसने बिल्कुल छोड़ दिया था, कोई बात नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र, कोई जासूसी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जब पहले एक साल के बाद वसुदेव जी लाए पुत्र को, और कंस ने कहा कोई बात नहीं, हमें आठवां पुत्र चाहिए, आपका आठवें पुत्र से भय है, तो वसुदेव जी लेके गए। और नारद जी ने बताया कि अरे सब तो जो है देवता लोग हैं, तो तुम जो है विश्वास मत करो। तो यहां पर भी समझने वाली बात है कि नारद जी ने कहा कि वसुदेव पर विश्वास ना करो, ये बहुत विशेष जो है सुरक्षा है, क्योंकि वसुदेव जी पर अगर विश्वास करे तो फिर वसुदेव जी जो है कंस के साथ विश्वासघात कैसे कर सकते हैं, वो विश्वासघात का दोष लगता है। मैं आप पर विश्वास करता हूँ, रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जो है मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते, और ये मुझे अगर धोखा दें तो विश्वासघात हो जाएगा, है ना। और कंस ने विश्वास किया था कि मैं चाहे जितना धोखा दूँ वसुदेव जी को, लेकिन वसुदेव जी मुझे धोखा नहीं दे सकते, है ना, तो विश्वासघात होगा। लेकिन कंस का जो है विश्वास खत्म कर दिया नारद जी ने, वसुदेव जी पर विश्वास मत करो, ये सब शत्रु पक्ष के लोग हैं, तो बंदी खाने में डाल दिया, जकड़ दिया, बिल्कुल विश्वास नहीं किया। ऐसे में वसुदेव जी ने जब धोखा दिया तो विश्वासघात नहीं माना जाएगा कि नहीं? तो विश्वासघात नहीं माना जाएगा। मुझे चोर समझते ही हो अगर कि मैं चोरी हूं और सब तरह से मुझे बांध करके रखा है और मैं फिर चोरी करूं, तो ये विश्वासघात नहीं माना जाएगा। तो नारद जी ने बड़ी रक्षा करी कि वसुदेव जी का विश्वास, कंस का जो वसुदेव जी के ऊपर विश्वास था वो खत्म कर दिया कि विश्वास मत करो, और तब कृष्ण वसुदेव जी विश्वासघात करेंगे तो विश्वासघात नहीं माना जाएगा कि नहीं, है ना, समझने वाली बात है, ठीक है।
धन्यवाद। दूसरा प्रश्न था कि मतलब कंस के कितना वीर था उसके बारे में हम भागवतम में कहीं पढ़ते नहीं, बस लगता है कि कंस,
कंस का ये जो है ये ऐसा है कि श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने जो है कृष्ण के जीवन के सब पूरे चरित्र बताए, और परीक्षित की आयु सीमित है, तो सीमित में सुखदेव गोस्वामी ने पूरा चरित्र चूंकि दिया है तो फिर ये जो बातें हैं ये फिर वो क्या हो गई, अलग हो गई, क्योंकि कृष्ण के चरित्र से थोड़ा अलग हो जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन नारद जी जब सुना रहे हैं गर्ग संहिता, तो राजा बहुलाशो को सुना रहे हैं, तो ऐसा 7 दिन का कोई चक्कर नहीं है, तो फुर्सत से बैठे। लेकिन परीक्षित महाराज का कि जितने भी भगवान कृष्ण के चरित्र हैं, पूरा जीवन चरित्र मुझे बताइए, और उनको जो है 7 दिन में शरीर भी छोड़ना है, और 9 स्कंद तक सुना दिए, तो 9 स्कंद तक समझो कि 3-4 दिन तो हो ही चुके हैं, है ना। तो अब 2-3 दिन ही केवल बचे हैं परीक्षित के, तो उसी में ही जो है कृष्ण का पूरा चरित्र सुनाना है। इसलिए राधा रानी का भी नाम नहीं आया 10वें स्कंद में, किसी भी गोपी का नाम नहीं आया यशोदा के अलावा, ठीक है ना। हाँ जी, इनका प्रश्न, इसके बाद आपका, ठीक है।
हरे कृष्णा। भाई जैसे हम सुनते हैं कि कंस ने इतना अत्याचार किया, सारे बाल यदुवंशी थे उनको, तो उस समय हम ये भी थोड़ा सा अगर हम देखें तो उस समय पांडु भी पूरा दिग्विजय कर रहे थे, तो उस समय उनको रोका नहीं गया, मतलब गुरु वंश के द्वारा।
उस समय महाराज पांडु का जो है वो देखना पड़ेगा, कि युधिष्ठिर का जन्म हुआ, 5 पांडवों का जन्म हुआ था, तो भगवान कृष्ण का, एक सेकंड विचार करना है, भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तो अर्जुन का भी जन्म कुछ समय के बाद हुआ, ठीक है ना। तो पांडु उस समय वन में थे, आप समझे, अभी विचार ही करना पड़ेगा ना। तो पांडु उस समय वन में थे, है ना, और वन में जो है उनके 5 पुत्र हुए, तो अर्जुन का जन्म हुआ कृष्ण के जन्म के बाद, है? तो वन में थे, तो उस समय मतलब कोई सूचना भी महाराज पांडु को नहीं थी, उनकी जो है 2 पत्नियां भी वन में थीं, तो ना तो महाराज पांडु को सूचना मिलती थी धृतराष्ट्र की, कि धृतराष्ट्र क्या कर रहे हैं, कहीं किसी की सूचना नहीं मिलती। वनवास का यह मतलब नहीं होता कि अपने पास मोबाइल रखो, आप मोबाइल तो था भी नहीं, लेकिन वनवास का ये अर्थ नहीं होता है कि भाई शहर के समाचार भी आपको दिए जाएं। आपको वनवास करना, तो फिर वनवास में फिर शहर का कोई समाचार भी आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। और धृतराष्ट्र था और दुर्योधन था, धृतराष्ट्र को जो है बड़ी खुशी हो गई थी कि उसको राज्य शासन मिल गया, राज्य का आसन सिंहासन मिल गया, और महाराज पांडु का कंटक दूर हो गया, क्योंकि उनको साप मिला है तो पुत्र उत्पन्न कर नहीं सकते अपनी पत्नियों से, और अब वन में चले गए हैं तो सुरक्षित, तो राजा धृतराष्ट्र बड़े सुरक्षित हो गए। लेकिन फिर जब महाराज पांडु का देहांत हो गया, और जो है ऋषि मुनि वहाँ के जो वन के थे वो कुंती को लेकर के आए, माद्री तो सती हो गई, और कुंती को लेकर आए 5 पुत्रों के साथ, तब इनको पता चला कि अरे यहाँ तो बड़ा चक्कर हो गया, अब ये आ गए, अब इनको हम पालें पोसें, और जब बड़े हों तो युधिष्ठिर को राज्य हम सौंपें। तो धृतराष्ट्र को फिर बड़ी ईर्ष्या हुई कि ये 5 के 5 पुत्र हमारे महल में अभी हमारे द्वारा पलेंगे, और आगे चलकर युधिष्ठिर जब बड़े होंगे तो इनको राज्य देना पड़ेगा। तो दुर्योधन और ईर्ष्या कर रहा था, ठीक है ना। तो ये सब जो है वहाँ पर राजनीति चल रही थी, पॉलिटिक्स, ठीक है ना। अच्छा, आपका प्रश्न। हाँ जी है जी।
कृष्ण जी में और विष्णु जी में क्या अंतर है?
कृष्ण जी में और विष्णु जी में क्या अंतर है? कृष्ण आदि पुरुष हैं, कृष्ण गोविंद आदि पुरुषम, जो गोलोक धाम में रहते हैं, 2 भुजाओं के हैं, बंसी बजाते हैं, गौओं गोपियों गोपों के साथ लीलाएं करते हैं, गोलोक धाम में रहते हैं। और जो विष्णु जी हैं उनके विस्तार हैं, जो वैकुंठ में निवास करते हैं, एक विष्णु क्षीर सागर में निवास करते हैं, है ना, एक विष्णु गर्भ समुद्र में है, एक विष्णु कारण समुद्र में है, तो विष्णु बहुत से हैं, है ना। जब भगवान कृष्ण आते हैं तो सभी विष्णु उनके शरीर में आ जाते हैं, सभी अवतार उनके शरीर में रहते हैं, तो कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी हैं, तो विष्णु के भी कारण है, ठीक है। धन्यवाद। एक आखिरी प्रश्न।
हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे भगवान श्री कृष्ण का अवतार कंस को मारने के लिए हुआ था, तो वो भविष्यवाणी क्यों हुई थी?
भविष्यवाणी क्यों हुई थी?
वैसे भी आ सकते थे भगवान।
नहीं, भविष्यवाणी क्यों हुई थी? भविष्यवाणी क्यों हुई थी उसका भी एक कारण है कि भगवान मारेंगे और जिनसे भगवान को जन्म लेना है देव के वसुदेव, उनकी सेवा कर रहा है कंस, तो अगर वो माता पिता की सेवा करे तो फिर भगवान को मारने का जो है फिर वो अच्छा कारण नहीं मिलेगा। अब समझ रहे? तो भगवान के माता पिता का अपराध करे, खूब अपराध करे, तब कारण मिलेगा भगवान को मारने का कि नहीं है? तो उनके माता पिता से बड़ा प्रेम कर रहा है और बड़ा स्नेह दिखा रहा है, तो आकाशवाणी हुई कि बड़ा मूर्ख है तू, है तो इनको लेके जा रहा है, इनका ही तो इसी बहन का जो तेरी बहन का आठवां ही जो है गर्भ है वो तेरी हत्या करेगा, तू तो इतना मूर्ख है, तू क्यों ऐसा कर रहा है आकाशवाणी। ठीक है,
जानबूझ के कर रहा था प्रभु जी, मरने
कंस के हाँ। कंस अपने स्वभाव से अपने हिसाब से वो वसुदेव देवकी से प्रेम कर रहा था, स्नेह कर रहा था। आपका क्या प्रश्न है?
मतलब भगवान श्री तरीके से आ सकते थे, या तो उसके पहले देवकी के जो छह पुत्र थे जो कंस ने मारे
हाँ।
तो फिर वो बिना आकाशवाणी हुए
भी आपको कथा पूरी पता नहीं है, आप कथा पूरी समझो। वसुदेव आपको बताया ना कि नारद जी ने कंस को समझा दिया कि ये सब जो पैदा हो रहे हैं यदुवंश में सब देवता लोग हैं, और वसुदेव भी देवता हैं, और यदुवंश में स्त्रियां हैं सब देवियां हैं, और ये तुम्हारे जो है वे पक्षी हैं, शत्रु पक्ष के हैं, विष्णु तुम्हारे शत्रु हैं और वो अवतार ले रहे हैं, उनके ही सहायता के लिए ये सब देवता देवियां जो है यदुवंश में जन्म ले रहे हैं, तो वसुदेव के जितने पुत्र हैं सब देवता हैं, तो तुम किसी का विश्वास न करो है? और आठवां पुत्र अगर हत्या करेगा तुम्हारी तो तुम्हें जो है सब पुत्रों की हत्या करना है, कंस है सब। ठीक है ना, धन्यवाद। अच्छा माता जी, आप ज्यादा समय नहीं, एक माता जी का प्रश्न है। ठीक है हाँ जी, गांधारी ने अच्छा हाँ हाँ ठीक करें आप ठीक करें, तो इसका मतलब है आप अच्छा इन्होंने माता जी ने बताया है, बड़ा अच्छा बताया है कि जब गांधारी के उधर से एक अंडा पैदा हुआ है ना, गांधारी के उधर से अंडा पैदा हुआ और युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था हाँ, तो इनको समाचार मिला। ठीक करें, तो इसको गांधारी को समाचार मिला कि युधिष्ठिर का जन्म हो चुका है, अब देखना पड़ेगा क्या है कथा किस तरह की है। तो गांधारी ने जब अंडे को जन्म दिया हाँ, वो देखना पड़ेगा समाचार मिला कि नहीं मिला, तो ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन अंडा जब पैदा हुआ मांस का पिंड था, मांस का पिंड था है ना, तो गांधारी ने सोचा कि ये क्या है, तो बेकार है, कुछ काम का नहीं है, तो फेंकना चाहती थी, तो ब्यास जी प्रकट हुए और ब्यास जी ने कहा कि नहीं इसको फेंको नहीं हाँ, इसमें जो है धीरे धीरे ठंडा पानी की जो है वो डालो, ठंडा पानी डालो, तो उसके जो है फिर 101 टुकड़े हो गए, और फिर ब्यास जी ने कहा कि एक एक टुकड़े को जो है घी के घड़ों में रखो, तो इस तरह से वो हुए। लेकिन गांधारी को समाचार मिला या नहीं मिला वो विचार करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से नहीं मिला, वो इस तरह से हुए। लेकिन जब वो आए 5 पुत्रों के साथ कुंती महारानी उनके संरक्षण में, तब पता चला कि युधिष्ठिर बड़े हैं दुर्योधन से, और वैसे भी पांडु के पुत्र होने के नाते उनका अधिकार है राज्य सिंहासन पर, पांडु के पुत्र होने के नाते भी पांडु को अधिकार था, तो उस कारण से भी अधिकार है, और युधिष्ठिर बड़े भी हैं दुर्योधन से भी बड़े हैं तो भी अधिकार है, तो दोनों प्रकार से युधिष्ठिर का अधिकार माना गया कि युधिष्ठिर को राज्य सिंहासन दिया जाएगा। ठीक है, तो गांधारी को समाचार मिला, ये दूसरी माता जी हैं, कोई और दूसरी माता जी हैं नहीं है, अच्छा ठीक है, इनको आखिरी अभी आवाज हो रही, फिर माइक पर बोलो।
हरे कृष्णा प्रभु जी, हम देखते कि कुंती महारानी और ये यशोदा और वृंदावन के वासियों के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध था, जब ये दामोदर लीला हुई तो कुंती महारानी वहां पे थी, तभी जब वो प्रार्थना करती है कि मैं ये देख के
नहीं दामोदर लीला में कुंती महारानी नहीं थी, दामोदर लीला में कृष्ण कितने थे 3 साल के थे, ठीक है, तो कुंती महारानी उस समय कुंती महारानी अब या तो वन में थी, पांचों पुत्र हो चुके थे, तो पांडु की जब मृत्यु हुई तब वो लेके आई, तो कुंती महारानी वन में रही होंगी या मान लो हस्तिनापुर में रही। तो कुंती महारानी को, कुंती महारानी वहाँ नहीं है, ब्रज में नहीं है, वो तो जो है उन्होंने कृष्ण के जो चरित्र सुने और कृष्ण के चरित्र जो है मतलब बहुत तेजी से फैलते थे बिना मीडिया के। कृष्ण के जो चरित्र हैं, जो वृंदावन में जो चरित्र हुए हैं, वो बिना मीडिया के जो है बहुत तेजी से फैलते थे। तो कुंती महारानी ने जो कृष्ण से जो बताया तो वो जो है सब सुना हुआ है, ठीक है ना। आजकल मीडिया में इतनी तेजी से नहीं फैलता है जितनी जल्दी वहाँ फैलते थे उस समय, कानों कानों से फैलते थे। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय। अभी आप बैठिए, कुछ सूचना देंगे।
हरे कृष्णा। धन्यवाद देंगे इसके जीता मित्रों का, बहुत सुंदर कथा। और प्रभु जी जानते हैं आपकी कई वर्षों से भगवद्गीता के श्लोकों पर टीकाएं लिख रहे हैं, और इसका नाम है श्री भगवान ने कहा। और बहुत प्रभु जी की कर्मठता से और बहुत मेहनत से अभी 18वें अध्याय पे आ गए हैं, और 18वें अध्याय के 38वें श्लोक तक पूरा हो गया। इसमें पूरे 18वें अध्याय का दूसरा पार्ट भी है, पहला पार्ट भी है। पूरी भगवत गीता के ऊपर प्रभु जी के हर एक श्लोक के ऊपर बहुत सुंदर टीका है, एक एक शब्द को बहुत खुल के बताया, और एक एक श्लोक के ऊपर कई पुराणों की कहानियां भी हैं। तो आप इसको जरूर लीजिए और अपने गीता के ज्ञान का पूरा लाभ उठाइए। और प्रभु जी का हम धन्यवाद करेंगे बहुत ही विशेष योगदान के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके जेता मित्रों की जय।
प्रभु जी साइन करके देंगे, तो हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है, तो जिस भी भक्त को लेना चाहे ले सकते हैं। सीधा 1 60 का पुस्तक है और 100 का। हरे कृष्ण।